टाइम्स नाउ द्वारा केरल की कन्वर्जन क्वीन सैनबा के चेहरे से नकाब हटाने के बाद उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि यह खुलासा कुछ और नहीं बल्कि उसे बदनाम करने का प्रयास है। नोटबंदी के बाद पहली बार आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इस बार के आर्थिक विकास के आंकड़े अपेक्षाओं से काफी कम साबित हुए, जो कि अर्थव्यवस्था पर डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के प्रभाव के बारे में चिंताओं को उजागर करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर अपने निचले स्तर को छू चुकी है।
To 5.7%, and it's quite obvious that it therefore throws up a challenge for the economy.
नोटबंदी के लगभग 10 महीने बाद इसके नतीजों पर राजनीतिक लड़ाई ने तेजी पकड़ी है। विपक्ष आरबीआई के आंकड़ों के जरिए सरकार पर हमला कर रहा है और वहीं वित्त मंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा है कि नोटबंदी के बाद प्रत्यक्ष कर राजस्व को अच्छा बढ़ावा मिलेगा।
The fact that money's got into the banking system doesn't mean that they are legitimate monies or that the monies have got legitimately converted. It only means that the anonymity around those monies which were otherwise floating in the system came to an end.
कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और विपक्षी दलों ने भी नोटबंदी पर सरकार के मूल्यांकन पर सवाल खड़े किए हैं। चिदम्बरम के सवालों से शुरू हुई इस राजनीतिक लड़ाई का बीजेपी ने भी जवाब दिया है।
Larger deposits, larger interest payments, that hits into the profit. That is directly related to demonetization. Now, why did the RBI do the bidding of the government in less than 24 hours?
वित्त मंत्रालय ने आधार कार्ड को पैन से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। नई डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। इससे पहले आईटी विभाग ने सरकार के ऐसा कदम न उठाने की उम्मीद की थी। उसका मानना था कि सरकार समय सीमा नहीं बढ़ाएगी। मुंबई में कुछ लोगों के लिए एक पुरानी इमारत मौत का सबब बन गई। असल में यहां के भिंडी बाजार में सैकड़ों साल पुरानी इमारत गिरने से 20 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। टाइम्स नाउ के पास इस बात के सबूत हैं कि ये पूरा मामला लापरवाही और अनदेखी का है। घटना के बाद जिम्मेदारी से बचने के लिए इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।
यहाँ पर जिनको मृत्यु आया है, ऐसे लोगों को, उनकी फैमिलीज को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन सरकार देगी। जो जख्मी है उनका इलाज का खर्चा भी सरकार करेगी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग, उनको हमने इसकी जांच करने के आदेश ये दिए हुए हैं।
मुंबई में गुरुवार को जमींदोज हुई सदियों पुरानी इमारत में बच्चों के लिए प्ले ग्रुप भी बनाया गया था। यहां घटना से महज 50 मिनट बाद 40 बच्चे पहुंचने वाले थे और सिविक बॉडी की अनदेखी और अवैधता को अनुमति देने के चलते इमारत में मौजूद ये 40 बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते थे।
पहले माले पे प्ले ग्रुप था, वो 9:30 बजे स्टार्ट होता है। सुबह हम लोग 8:30 बजे बिल्डिंग वो होता है।
मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल से पहले 3 राज्य मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें राजीव प्रताप रूड़ी, संजीव बाल्यान और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने और पुलिस द्वारा डेरा परिसर में कार्रवाई करने के बाद हरियाणा पुलिस ने डेरा के प्रवक्ता आदित्य इंसान के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। उसके खिलाफ देशद्रोह के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुए बीआरडी अस्पताल हादसे पर हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मौतों की जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीआरडी में अब भी लगातार बच्चे क्यों मर रहे हैं। अदालत ने बीआरडी हॉस्पिटल में हुई मौतों के कारणों की जांच के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वो 10 दिन के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज करे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सोनिया गांधी के बीच की लड़ाई के इस तरह सबके सामने आने के बाद टाइम्स नाउ को दोनों के बीच हुई बैठक का अंदरूनी विवरण हासिल हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलंबो जा रही हैं। स्वराज यहां सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी और इसके अलावा वो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री, विदेश मामलों के मंत्री समेत कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। ट्रिपल तलाक के मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक इशरत जहां ने कोलकाता पुलिस से शिकायत दर्ज की है कि उसके चार बच्चों में से दो का उससे अलग हो चुके पति ने अपहरण कर लिया है। इशरत ने दावा किया कि उसके पति के परिवार के सदस्य और समुदाय के अन्य लोग मामले को आगे बढ़ाने पर उसका उत्पीड़न कर रहे थे। सीबीआई ने केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता के मनोज की हत्या के मामले में सीपीएम नेता पी जयराजन का नाम अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया है और जयराजन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 18 के तहत आरोप तय किए गए हैं। जयराजन इस मामले में 25वें आरोपी हैं और सीबीआई ने फरवरी 2016 में उन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया था। बेंगलुरु में एक निजी स्कूल के टीचर ने कथित तौर पर हाजिरी के दौरान खड़े न होने के चलते एक 7 साल के छात्र की पिटाई कर दी। स्कूलों में शारीरिक दंड भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिहार के भगवानपुर में एक बार फिर सरकार की उदासीनता का नमूना सामने आया है। असल में यहां 1 लाख लीटर शराब जिसे नष्ट किया जाना था उसे पास के धान के खेतों में बहा दिया गया। राज्य सरकार की इस लापरवाही के कारण किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गयी।
बॉटलिंग प्लांट था, उसमें मद निषेध नीति लागू होने के बाद उनका स्टॉक बच गया था, जिसको सरकार के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विनिष्टीकरण किया जा रहा है।
गौ ज्ञान फाउंडेशन के सदस्यों ने शहर में मवेशियों के इलीगल ट्रांसपोर्ट और उनके भंडारण के सिलसिले में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का रुख किया है। उनका दावा है कि पशुओं को निर्धारित मानदंडों का पालन किए बगैर ले जाया गया।
There are a lot of illegality even in happening in this place. First thing being the transportation itself is illegal. If you go there, you will see that none of the trucks which come there has got the permit to transport cattle. All of them are metal containers. There's hardly any ventilation.
तिरुवनंतपुरम के थम्मापनूर बस टर्मिनल पर सो रहे यात्रियों पर केरल के सुरक्षा गार्ड द्वारा लाठी बरसाने का वीडियो सामने आया है। घटना के बाद गार्ड को गिरफ्तार कर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। बेंगलुरु में जेडीएस के पद्मनाभन नगर के उम्मीदवार वीके गोपाल का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में इस कैंडिडेट पर फूलों के एक दर्जन से ज्यादा डिब्बों की मदद से फूल बरसाते दिखाया गया है।
गूगल प्ले और एप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज़ रेडियो।